मेरी जिंदगी में आए हो और ऐसे आए हो तुम, जो खुल गया है सांसों में वो गीत लाए हो तुम।
तुमको पाके हंस के गा के निखरी है सवरी है जिंदगी। तुमको पाके क्या हुआ? हंस के गा के निखरी है सवरी है जिंदगी, उजली सुबह रंगी शामें आ गई एक नई दिलकशी, एक नवीन दिलकशी, एक नूतन दिलकशी, नूतन आकर्षण तुम्हारे आने से जीवन में आ गया है। और जब से तुमको पाया है जिंदगी क्या हो गई? निखर गई, सवर गई। बाबा ने कहा ये परमात्मा पालना तुमको सारे कल्प में केवल अब मिलती है, एक ही बार। ऐसी पालना तुमको सारे कल्प में फिर कभी नहीं मिलेगी, अभी ये पालना मिलती है। मान भी लो रात जो है कहती, ये फिजा जो समझाए, मेरे जिंदगी में आए हो और ऐसे आए हो तुम जीवन में, ऐसे आ गए। कैसे आ गए? दबे भाव, अचानक से, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, कब आए पता ही नहीं चला। मेरे जिंदगी में आए हो और ऐसे आए हो तुम, जो घुल गया सांसों में वो गीत लाए हो तुम। बच्चों के दिल से ऑटोमेटिक कौन सा गीत बजता है? मेरा बाबा। और बाप के दिल से कौन सा गीत बजता है? मेरे लाडले बच्चे, मेरे बच्चे लाडले बच्चे, मेरे बाप दादा के सिर के ताज। जो घुल गया है सांसों में वो गीत लाए हो तुम। तुम ही कहो दिल जो ऐसे गाए, कोई क्यों ना गुनगाए गुनगुनाए, मेरे जिंदगी में आए हो और ऐसे आए हो तुम। एक छोटा बच्चा अपने पिताजी के पास आता है और पूछता है, आप एक घंटे में कितना कमाते हो? पिताजी कहते हैं, क्यों, तुमको क्या करना है? तुम अपनी पढ़ाई करो, सोना चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, वो चाहिए होगा। वो कहता है, नहीं नहीं बताओ ना कितना कमाते हो। पिताजी कहते हैं 500 रुपए। वो कहते हैं, मुझे 300 रुपए दे सकते हैं? तो 300 क्या करोगे 300 रुपए का? पहले ही तुम्हारे पास खिलौने दे के रखे इतने सारे, और क्या चाहिए तुमको? ऐसे ही व्यर्थ में खर्च करोगे। और उसको डांटते, वो बेचारा थोड़ा सा रोता है और चला जाता है। फिर पिताजी को लगता है, ये वैसे तो कभी पैसे मांगता नहीं है, जरूर कुछ तो होगा, इसका काम होगा। तो उसके कमरे में जाते हैं और कहते हैं कि ये लो 300 रुपए, तुमको चाहिए थे ना, तुमको जो चाहिए वो खरीद लेना। तो वो खुश हो जाता है और वो अपने तकिया के नीचे से कुछ पैसे होते वो निकालता है और वो पिताजी कहते अरे तुम्हारे पास तो पहले ही पैसे थे फिर तुम क्यों मांग रहे थे। वो कहते थे कम पड़ रहे थे। तो उसके पास 200 रुपए होते अभी 300, तो वो गिनता है 500 हो गए। तो पिताजी उसको कहते अब तुम इसके क्या करोगे। वो कहते क्या 1 घंटा आप जल्दी घर आ सकते हो, मुझे आपके साथ खेलना है, खाना खाना है। पिताजी स्तब्ध हो जाते, सब कुछ है समय नहीं है बस उसके लिए। इसके लिए तो बच्चा कहता है ये लो 500 रुपए और 1 घंटा थोड़ा जल्दी आ जाओ मेरे लिए। 1 घंटे में 500 की कमाई करता है ना। तो पिताजी को कुछ समझ में आता है, कुछ अनुभव, कुछ रियलाइज होता है। क्या रियलाइज होता है, क्या रियलाइज होता होगा, बच्चों को प्यार चाहिए। सूक्ष्म रियलाइजेशन, डबल फॉरेनर से मुलाकात। अनुभव तुम्हारे पास बहुत है, बाबा ने कहा क्या करो अब। सूक्ष्म रियलाइजेशन, सटल, बहुत सूक्ष्म, महीन, गहन। जब व्यक्ति को सूक्ष्म अनुभव होता है, रियलाइज होता है, एहसास होता है किसी चीज का, तब कहीं जाके परिवर्तन आता है। तब तक परिवर्तन नहीं आता है। तब कहीं जाके वो पिता सोचता है कि मैं थोड़ा ज्यादा तेज भाग रहा हूं, मुझे अब रुकने की आवश्यकता है, क्योंकि जिनके लिए ये कर रहा हूं उनके लिए ही समय नहीं है। और एक दूसरी बात, मनुष्य का जीवन मुख्य जो भावना है वो कौन सी है उसकी, स्नेह। योगी जीवन का फाउंडेशन, मंजूबेन आज की अव्यक्त वाणी सुबह की, निश्चय। पर परिवार का फाउंडेशन स्नेह। सेवाएं जो हुई उसका फाउंडेशन, चाहे कितना भी अभिमानी हो, आज की अव्यक्त वाणी, उसको भी किसने खींच के लाया यहां पर, स्नेह ने खींच के लाया। स्नेह पर मुरली चली है पूरी आज सुबह की। तो कल जो अव्यक्त वाणी चली थी वो मुरली थी 18 जनवरी 2007 की। तो आप इस मुरली को आज रिवाइज करेंगे, कुल मिला के 18 बातें हैं, 18 पॉइंट्स हैं मुरली में। कौन किसको देख रहा है, स्नेह का सागर दो प्रकार के बच्चों को देख रहा है। पहले है लवली बच्चे और दूसरा है लवली लीन बच्चे। लवलीन अर्थात डूबे हुए, खोए हुए, प्रेम में समाये हुए। एक अंग्रेजी शब्द लिया, एक हिंदी शब्द लिया और दोनों को मिला के एक नए शब्द की रचना की पापा ने। जैसा शब्द किसी भाषा में आज तक किसी ने नहीं बनाया। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है नियोलॉजिज्म, नव शब्द, जो पहले था नहीं, व्यक्ति ने खुद इजाद की है जिसकी। जैसे अंग्रेजी में शब्द है जगरनॉट, वो शब्द निकला है जगन्नाथ से। जगन्नाथ अर्थात जो मालिक है, जो स्वामी है, जो लॉर्ड है, उसी से शब्द निकला जगरनॉट, मतलब जो लैंडलॉर्ड है, जो मालिक है। तो बाबा ने वो नहीं किया, कुछ और ही कर दिया, नया ही शब्द बना दिया एक। थोड़ा हिंदी से उठाया और इधर से लव उठाया और उधर से लीन उठा दिया। और नया बना दिया एक। तो बाप किन को देख रहा है, लवली बच्चों को और लवलीन बच्चों को देख रहा है। अमृत वेले से भी पहले बाप के पास स्नेह की लहरें आ रही थी, अमृत वेले से भी पहले। जल्दी उठ गए होंगे ना 2 बजे से, या उससे भी पहले। अमृत वेले से भी पहले। तो दो प्रकार के बच्चे देखे, दो प्रकार के गीत। दूसरी बात, पहला गीत जो बच्चे गा रहे थे ऑटोमेटिकली, मेरा बाबा, और दूसरा गीत जो बाप दादा गा रहे थे, कौन सा? मेरा बाप, मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, बाप दादा के सिर ताज बच्चे। ये भगवान का गीत है हमारे लिए, जो घुल गया है साथों सांसों में, वो गीत लाए हो तुम, मेरे जिंदगी में आए हो और ऐसे आए हो तुम। निखरी है, सबरी है जिंदगी जब से तुम आ गए। तीसरा, दो प्रकार की मालाएं। एक माला हमने उसके गले में डाली, उसके बदले में उसने हमारे गले में डाली। एक प्रश्न बीच में हमने उससे पूछा, कब तक? उसने उधर से पूछा, तुम बताओ पहले कब तक, जब तक तुम नहीं बताओगे मैं भी नहीं बताऊंगा। अभी वो आगे है, अभी यहां प्यार की बातें चालू है, वो आगे आएगा। अभी सौदा प्यार में चल रहा है, इधर धीरे थोड़ा हिसाब चालू होगा, अभी यहां कोई हिसाब नहीं है। तो हमने कौन सी माला डाली उसके गले में? स्नेह के मोतियों की माला डाली, और उसने कौन सी माला डाल दी? अपने बाहों को ही माला बना दिया और डाल दिया। दो प्रकार की माला है। उसके बाद में दो प्रकार के प्लेन, किस में आए हो? यहां पर मन के प्लेन में आए हो और स्नेह के प्लेन में आए हो, मन से आए हो। ये शायद उनके लिए जो पहुंचे नहीं है, जो दूर कहीं बैठे हैं पर पहुंच गए, लास्ट में याद किया बांधेली माताओं को, जिनको, जिनके प्यार को बाप याद कर रहे। ये वो बच्चे हैं जो आए नहीं है शरीर से, मन से आए। तो स्नेह के प्लेन में आए जो आए वास्तव में, और वो जो नहीं आए वो मन के प्लेन से, बाबा उनको देख रहे। अव्यक्त बाप दादा एक बार पार्ट ग्रुप से मिल रहे थे और खड़ा किया, संगम भवन वाले खड़े हो जाओ, संगम भवन वाले, कोई भी नहीं था, सेवाओं में लगे थे। जो सामने बैठे थे उनको याद नहीं कर रहे, याद किसको कर रहे हैं? जो है ही नहीं सभा में, जो उधर सेवा कर रहे हैं, देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं संगम भवन वाले, कोई नहीं दिखा। बाबा को बताया, बाबा वो लोग सेवा में है। तो भगवान याद उनको कर रहा है जो है ही नहीं सभा में, और जो सभा में आगे आगे कर रहे हैं, हम उनकी तरफ तो देख भी नहीं रहा है। इसीलिए स्थूल में होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, स्थान में होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। दीदी के बहुत कड़े वाक्य है, वो कभी बाद में सुनाएंगे। उसके बाद तो ये दो प्लेन, उसके बाद में दो रूप में तुम यहां आए हो। पहला रूप अव्यक्त रूप, और दूसरा रूप फरिश्ता रूप। अव्यक्त रूप शायद उनके लिए जो यहां है ही नहीं, फरिश्ता रूप में जो यहां है और अफरिश्ता रूप में बैठे हैं शायद। और उसके बाद में इस दिन के दो नाम दिए, एक स्मृति दिवस और दूसरा समर्थी दिवस। ब्रह्मा का कैसा पुरुषार्थ होगा जो उसका इस संसार से विदा लेने का जो दिन था। बड़ी सूक्ष्म बात है। यदि कोई मरता है, ठीक है, कितने लोग मरते हैं, कहां कौन याद करता है? ये वो व्यक्ति है कि जिसके इस संसार से जाने के दिन कई समय तक बाद में अंत तक उस दिन लोगों को प्रेरणा मिलती रहती है। 18 जनवरी के दिन वो सारे चेहरे अमृत वेले रोज दिखाई देने लगते, जो साल भर गुप्त थे, अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठे थे, एकदम प्रकट होने लगते हैं। खुशी होती है उन सब चेहरों को देखकर, अमृत वेला जो रोज कभी नहीं दिखते, बिल से तो समर्थी दिवस अर्थात इस व्यक्ति का कैसा पुरुषार्थ होगा उसके जीवन में कि जो उसके जाने के दिन भी उसकी यादगार स्वरूप कितने समय तक उसकी गूंज यज्ञ में गूंजती है कि उस दिन जो ठंडे पुरुषार्थी है वो भी ढीले पुरुषार्थी सुस्त महादेव वो सब भी चुस्ती में भर जाते हरकत में आ जाते शक्ति आ जाती है दो 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 तो ऐसी ये छह दो दो बातें देखी। उसके बाद में आगे बाबा ने स्मृति दिलाई। कौन सी स्मृति? ये स्मृतियों की लिस्ट बनाओ बाबा ने कहा। और बाप ने तुमको सबसे पहली स्मृति कौन सी दी? तुम कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा हो। कौन हो? कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा हो। सबसे पहले आते ही स्मृति दिलाई। स्मृति दिलाने का ही तो काम वो करता है, याद दिलाता है तुम कौन हो, तुम क्या हो। और वो स्मृति ही आत्मा में जागरण लाती है, नहीं तो भोले भूले बैठे हुए लक्ष्यहीन। करना क्या है जीवन में कुछ पता नहीं, कोई उमंग नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई शक्ति नहीं, हारे थके जीवन में। कहा ना, बाप दादा को परेशानी की आवाज सुनाई देती है, दुख अशांति की आवाज सुनाई देती है, तुमको सुनाई नहीं देती? अगर वो ना आता हम भी आवाज करने वालों में होते दुख और अशांति की। तो स्मृति, तो पहली स्मृति उसने कौन सी दिलाई? कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा हो। कोई आके याद दिला दे अरे तुम वो हो, तब कहीं जाके शक्ति आती। हनुमान तो बैठ गया था, सोच रहा था कैसे पार करूं कैसे पार करूं। सारे वानर सोच रहे थे वापस जाते। अंगद ने कह दिया था कि मैं यहां समाधि ले लेता हूं, वापस नहीं जा सकता राम जी के पास बिना काम पूरे किए। सब ने कहा था हम तो बस अब क्या करें। हनुमान जी भी उनकी बातों में आ गए और बैठे रहे। तब कहीं जामन ने याद दिलाया कि अरे तुम क्या किया था तुमने बचपन में उसकी नटखट अदाओं का की याद दिलाई उसको कि तुमने ये काम कर दिया था बचपन में। तब कहीं शक्ति याद गई, जल्दी लांज गए अचरज नाही अतुलित बल धामा। तब पावर आ गई एकदम कि मैं ये कर सकता हूं, मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा, ये बंदर। शक्ति आ गई, पावर आ गई। राम रसायन तुमरे पासा, राम रसायन कुट कुट के भर गया, ऐसी शक्ति आ गई अंदर। तो बाबा ने भी आके क्या कर दिया, स्मृति दिलाई अरे तुम कल पहले वाली सबसे ज्यादा भाग्यवान आत्मा तुम हो। और इस स्मृति ने क्या कर दिया, तुम्हें आत्मा अभिमानी बना दिया, उस आत्मा अभिमानी ने परमात्मा अभिमानी बना दिया। बाप के जो खजाने वो तुम्हारे खजाने हैं, मैं कहते हो, और जब मेरा शरीर कहते हो जैसे भूलता नहीं है वैसे बाप को कह क्यों भूलते हो फिर। बाप को मेरा कह दिया, बाप के खजाने मेरे हो गए, ये मेरा कहना अर्थात सब कुछ सहज हो जाता है, मेरा भूलना मुश्किल होता है, मेरा भूलना मुश्किल होता है, मेरा याद करना सहज होता है, सबसे सहज वही होता है। शरीर कभी भूलता है क्या? मेरा शरीर कहते हो भूलता है शरीर? कभी नहीं भूलता है। या भूलते हो रात में कि पता नहीं उठूंगा तो क्या होगा, याद रहेगा कि नहीं मेरा शरीर है शरीर है? या कुछ लगा के रखते हो उसको, चिपका के रखते हो, ये किसी और का तो नहीं है उठने के बाद? इसकी भी एक कहानी सुनाई थी कभी, उसको फिर से बाद में सुनाएंगे। तो स्मृति, ये परमात्मा पालना तुम्हें कल्प में एक ही बार मिलती है। हम एक जगह गए थे भट्टी के लिए, तो बहन ने पूछा इसके बाद कब आओगे, हमने कहा 5000 साल में एक स्थान में एक ही बार। ऐसे कह दिया, अब देखेंगे 5,000 साल में। तो उस बहन ने थोड़ा सीरियस ले लिया उसको, उन्होंने कहा कि देखो अगर 5,000 साल में हम एक ही बार कर रहे हैं तो कितना हमको सीरियसली करना चाहिए ये। सातवा, आठवा, बाबा ने कहा ये स्नेह का दिवस है, स्नेह के दिवस में सब कुछ सहज होता है। स्नेह क्या कर देता है? मेहनत से छुड़ा देता है। तो आज का दिन कैसा रहा? सहज योगी का दिन रहा या मुश्किल लगी? किस किस को मुश्किल लगी? हाथ खड़ा करो। किस किस को सहज लगा वो भी हाथ खड़ा करो। आज के दिन भी मुश्किल लगी, माया को छुट्टी दे दी, बाबा ने प्रश्न पूछा, माया को छुट्टी दे दी, स्नेह का दिन। उसके बाद में अगली पॉइंट, इस वर्ष के लिए 4 नाम दिए, 2007 की मुरली है, न्यारा वर्ष, प्यारा वर्ष, मेहनत मुक्त वर्ष और समस्या मुक्त वर्ष। इस वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ। क्यों मुक्ति वर्ष मनाओ? क्योंकि संसार की आत्माएं दुखी है, अशांत है, इसलिए तुम्हें मुक्तिदाता बन, बाप के साथी बन, आत्माओं को मुक्ति देनी है। जब तक तुम मुक्त नहीं, किससे मुक्त? समस्याओं से या माया से? ऊपर कहा ना, माया से मुक्त रहे। जो खुद मुक्त है वही दूसरों को मुक्त कर सकते हैं, जो खुद ही बंधन में है वो दूसरों को बंधन में, बंधन से मुक्त कैसे कर सकते? खुद ही बंधक है। और बंधन में डालने वाली एक भाषा है तुमको, कौन सी भाषा है आशीष भाई? वो बंधन में कौन सी भाषा डालती है? ऐसा वैसा, ऐसा था इसलिए वैसा, वैसा था इसलिए ऐसा, ऐसा वैसा, ऐसी भाषा। ये भाषा जो है इसको हटाओ, इस भाषा को हटाओ। ऐसा था इसलिए ऐसा हुआ, वैसा था इसलिए वैसा, अर्थात कारण वाली भाषा है ये, अर्थात एक्सक्यूजेस वाली भाषा है। आगे एक जगह का टालने वाली भाषा वो भी आया है सामने, एक्सक्यूज वाली भाषा, बहानेबाजी वाली भाषा। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो था। क्यों नहीं किया? क्योंकि वैसे उसमें लगे हुए थे, ये इसने रुकावट डाली, पहले इसको हटाऊं यहां से। उसने वैसा किया, उसने वैसा किया, पर तुमने क्या किया? तुम कितने सहयोगी बने? उसने करने नहीं दिया, तो कर ही रहे थे। बाबा ने कहा ये इसने, उसने, ऐसा वैसा, इस भाषा को हटाओ। उसके बाद में दसवीं बात, फाइल, फाइनल प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञाएं बहुत करते हैं, पर प्रतिज्ञा क्या हो रही है? बाप के फाइल में जमा हो रही है। अभी इस वर्ष क्या करोगे? और भी ऐड करोगे क्या? पहले ही फाइल इतनी भरी हुई है, एक एक बच्चे का एक एक अलमारी बन गई होगी ऊपर फाइलों की, उसकी चाबी आप कौन संभालेगा? और हर साल में नई नई फाइलें, नई नई प्रतिज्ञा है, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा करने के कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। प्रतिज्ञा कर रहे अर्थात डर है थोड़ा सा कि वो चीज होने वाली है, इसलिए कर रहे, वो नहीं करेंगे, ये मुझे नहीं खाना है। आज जलेबी बन गई, प्रतिज्ञा की सुबह अमृत वेला पता चल गया कि जलेबी बनने वाली है, सुबह या प्रतिज्ञा कर ली, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। मुरली चल रही है उसमें भी रिवाइज कर लिया, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। फिर थोड़ा चक्कर विक्कर लगा के उसमें भी वापस रिवाइज किया, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। और जैसे उधर पहुंचे तब भी सोचा कि नहीं खाऊंगा और नहीं खाऊंगा, कल से नहीं खाऊंगा। और जैसे देखा खाली, ये तो भोग है, ब्रह्मा भोजन का बड़ा महत्व है, खाली। और फिर सोचते हैं अभी अगली बार से करेंगे, अगले गुरुवार से एकदम पक्का, जो भी हो अभी तो पता भी नहीं क्या है, पर अगले गुरुवार से एकदम फिक्स। फटकूंगा ही नहीं इधर, कहीं और सैर सपाटा लगाते रहूंगा। तो प्रतिज्ञा, जो चीज हमें समझ में आ जाती है पूरी तरह से, उसकी कोई प्रतिज्ञा की आवश्यकता नहीं होती है। प्रतिज्ञा करनी पड़ रही है अर्थात शायद समझ में नहीं आया, अभी भी आकर्षण है इसलिए प्रतिज्ञा करनी पड़ रही है। ऐसी प्रतिज्ञा कौन करता है अमृत वेला की, आज दिन भर मैं बाहर के होटल का कुछ भी नहीं खाऊंगा, करते है कोई? आज मैं मार्केट से गुजरूंगा पर वो कचौड़ी बन रही है उसको तो देखना भी नहीं है बिल्कुल, ये प्रतिज्ञा क्यों नहीं करते ब्राह्मण? एक दिन वाला भी नहीं करता, सात दिन अभी अभी कोर्स हुआ है वो भी नहीं करता, उसको भी सहज हो जाता है, क्यों नहीं करता? क्योंकि कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जहां आ जाती है तहां प्रतिज्ञाएं खत्म हो जाती है। अभी प्रतिज्ञाएं करनी पड़ रही है क्योंकि आकर्षण है, अभी प्रतिज्ञाएं करनी पड़ रही है क्योंकि भय है। प्रतिज्ञा करती है उसके, उससे मैं बात नहीं करूंगा बिल्कुल, उसने मेरे साथ ऐसा किया ना, मैं बात नहीं करूंगा। और सामने आ गए कि बैठे, दो घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। प्रतिज्ञा है करनी पड़ेगी, आज मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य। और जिस दिन ज्यादा ही प्रतिज्ञा करते उसी दिन टूटता है और कहते अरे ये क्या हो गया। मन को जरा समझना है, मेरा मन मुझे से म्याऊ, समझना है। ये बहुत चालबाज है, बहुत धोखा देता है, उसको जो चीज कहो ये तुमको करनी नहीं है करनी नहीं है करनी नहीं है वही करेगा, पछाड़ देगा, फिर ठग है, ठग ठगों में ठग, क्या कब करता है समझ नहीं आता। कभी तो बहुत उमंग गुस्सा, ऐसा पुरुषार्थ करूंगा कि बस ऐसा लगता है बस 6 बजे तक शाम को संपूर्ण बन के ऊपर पहुंच जाऊंगा, ऐसा वैराग संसार से। और दोपहर को क्या हो जाता है पता नहीं, और शाम को क्या हो जाता है, आलस्य का देवता बन जाता है रात तक। बाबा ने कहा फाइल को फाइनल करो, कुछ भी करना पड़े, सहन करना पड़े, झुकना पड़े, बदलना पड़े, तुमको बदलना ही है, सुनना पड़े कितना भी, तुमको बदलना ही है। प्रतिज्ञा जो अगर कर भी ली, चलो प्रतिज्ञा के कुछ फायदे भी है, प्रतिज्ञा हमको अनुशासित करता है, उसके वैसे तो देखा जाए संपूर्ण समझ आने के बाद प्रतिज्ञाओं की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु तब तक फिर भी प्रतिज्ञाओं का महत्व तो है, क्योंकि प्रतिज्ञा करने के बाद हमको याद रहता है। बाबा ने कहा प्रतिज्ञा के लिए क्या कहा जाता है दुनिया में, रघुकुल रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, कुछ भी हो जाए प्रतिज्ञा 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 है। वह प्रतिज्ञा हमको स्थिर रखती है, प्रतिज्ञा हमको अडोल रखती है, प्रतिज्ञा रही तो जीवन थोड़ा अनुशासित होता है, नहीं तो कहीं भी भटकते रहते हैं दिन भर। और हमने वो प्रतिज्ञा सबके सामने अगर कर दी तो फिर हमको करना ही पड़ता है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, अरे तुम तो वो कमजोर खेत की मूली निकली। इज्जत का सवाल रहता है, सबके सामने प्रतिज्ञा कर ली, सबके सामने कर प्रतिज्ञा कर ली, पूरा अव्यक्त मास अमृत वेला नियमित करूंगा, और एक दिन भी अगर नहीं दिखा तो दूसरे दिन पूछेंगे ना क्या हुआ, उपहास का पात्र बन जाऊंगा दूसरों का। दूसरों को तो मजा बहुत आएगा इसमें, डिंगे तो बहुत हाँकते थे, अब क्या हुआ। तो प्रतिज्ञाएं तो करनी है, परंतु प्रतिज्ञा सोच समझ के करनी है, संपूर्ण समझ के साथ करनी है, और रिवाइज करनी है उनको। एक दिन प्रतिज्ञा कर ली उससे नहीं होता है, रोज प्रतिज्ञा करनी है, रोज उसको रिवाइज करनी है, रोज प्रतिज्ञा बीज है उसको पानी देना होता है, रोज स्मृति का पानी डेली, योग की धूप चाहिए उसको, तब कहीं जाके वो अंकुरित होगा। कोई भी प्रतिज्ञा हो, कैसी भी प्रतिज्ञा हो, तो बाबा ने कहा प्रतिज्ञा फाइल को क्या करो, फाइनल कुछ भी करना पड़े फिर उसके लिए। प्रतिज्ञा कर ली तो कर ली, फिर अब पीछे नहीं हटना, अब आगे बढ़ते जाना, फिर कुछ भी हो जाए, मर गए तो चलेंगे, झुक गए झुकना पड़े, कुछ भी करना पड़े करते रहो। उसके बाद में बाबा ने आगे की पॉइंट 11 भी, एक एडिशन करो, कौन सी एडिशन करो, कौन सी एडिशन करो सेवाओं में, तीनों सेवाएं एक साथ, ये रिजल्ट बाप दादा देखना चाहते हैं। मन की सेवा भी कर रहे हैं, वाचा भी कर रहे हैं, और साथ में कर्म से स्नेह और सहयोग भी दे रहे हैं। फिर ये नहीं कहना पड़ेगा ये ऐसा करता है वो वैसा करता है, इसने ऐसा किया वैसा किया। बाबा ने कहा तुमको तीनों सेवाएं एक साथ करनी है, ये महत्वपूर्ण काम तुमको करना है। ये तो कई बार कहा है मुरलियों में, वाचा सेवा कर रहे तो साथ साथ मन जो आत्माएं सम्मुख बैठी है उनको साथ साथ उनको शक्तियां भी दे रहे हैं, हम शक्तियां भर रहे हैं उन आत्माओं में, ताकि हम जो कह रहे हैं उन आत्माओं के अंतर मन में वो छप जाए, अंकित हो जाए, सत्य मन के पटल पर अंकित हो जाए, सब परिवर्तन आएगा उनमें। उसके लिए हमारी स्थिति भी आंतरिक बड़ी शक्तिशाली चाहिए, तो एक एडिशन करो। उसके बाद में अगली बात हाँ, बाबा को प्रश्न पूछते हैं कब पर्दा कब खुलेगा, विनाश कब होगा। बाप दादा प्रश्न पूछते हैं तुम बताओ कब तक, क्या कब तक, पुरानी भाषा पुरानी चाल, कौन सी वाली, अलबेलेपन और कड़वेपन की चाल, वो तुम्हारी कब तक, पहले उसको समाप्त करो फिर ये हम उत्तर आपको देंगे कब तक वाली। तो तुम्हारा कब तक का जवाब है मेरा कब तक, मैं तो अभी रेडी हूं। बाप तो जा सकता है पर जाएंगे नहीं बच्चों के बिना, ये भी कहा एक जगह एक सेकंड में करा सकते हैं, पर्दा खोलना विनाश कराना गेट खोलना जो भी शब्द कहो। कब तक, उसके बाद में 13 पॉइंट, बाप दादा की आश, क्या आश है उसकी, बच्चे कारण को खत्म कर दे, निवारण स्वरूप बन जाए, समस्या को खत्म कर दे और समाधान स्वरूप बन जाए, कारण समाप्त, बहुत कारण दे दिए, ये क्यों वो क्यों नहीं किया, वो इसलिए वो किया, लेट क्यों हुए, ये हुआ था वो हुआ था वो होता, हर दिन नए कारण विलंब से आने के, हर दिन नित्य नए कारण, आज ये हो गया था कल वो हो गया था कल वो कल कैसा कैसा टायर पंक्चर हो गया था, कपड़े गीले थे, बहुत सारे कारण है, चप्पल ही टूट गई थी MBBS में एक बार वो प्रैक्टिकल चालू था और दो लड़कियां वो लेट आई, तो हमारे सर थे बड़े स्ट्रिक्ट थे, तुम लेट क्यों आई, बोला सर मेरी चप्पल टूट गई थी, अच्छा सैंडल ओके बैठो, फिर दो लड़के आए उधर से, अब तुम्हारा क्या हो गया था तुम्हारी भी चप्पल टूट गई थी क्या, वो कहता सर मेरे कपड़े गीले थे नए नए कारण तो टीचर को अच्छे ऐसे स्टूडेंट अच्छे नहीं लगते, ना ही बाप को ऐसे बच्चे अच्छे लगते हैं, ना ही गुरु को ऐसे शिष्य अच्छे लगते हैं जो कारण देते रहते हैं। काम दे दिया कोई शाम तक देखा हुआ कि नहीं, वैसा ही हुआ ही नहीं, उससे पूछा क्यों भाई क्या हुआ, वो कहते भूल ही गया क्या करते याद ही नहीं रहा बाप दादा की आश। उसके बाद में 14वीं पॉइंट, एडवांस पार्टी पूछ रही है कब गेट खोलना है, बाबा दादियों से पूछते बताओ कब करना है तारीख बताओ, बाबा मधुबन के हेड्स इंचार्जेस से पूछते, बाबा जोन इंचार्ज टीचर से पूछते बताओ, दादाओं से पूछते दादियों से पूछते, बताओ बताओ बताओ, कितने लोगों से पूछा। और बाबा ने ये नहीं मत समझना खाली इनसे पूछ रहे, जो एक दिन का है वो भी जिम्मेवार है, सात दिन का है वो भी जिम्मेवार है, हर एक जिम्मेवार है। यहां पर हर एक अपने आप को क्या समझे, मैं जिम्मेवार आत्मा हूं, ये कार्यभार मुझ पर है, मुझे करके दिखाना। चौदहवीं पॉइंट। उसके बाद में पंद्रहवीं, गुजरात ग्रुप से मुलाकात। क्या कहा, कौन सी सेवा करके दिखानी है, बाकी सेवाएं तो बहुत कर रहे हैं पर अब कौन सी सेवा करो गुजरात वाले। मनसा सेवा में नंबर वन, कितना बड़ा होमवर्क दे दिया, अर्थात योग भट्टिया, बस बैठकर तपस्या करो, सकाश फैलाओ, वो भाषण करे तुम सकाश दो। कितनी अच्छी बात बोली है, वो भाषण करे और तुम पीछे बैठ के सकाश। पर इसका मतलब ये नहीं, अब इसका बड़ा उल्टा अर्थ निकाल सकते हैं, हम तो इसलिए पीछे रहते हैं कि हम दूसरों को चांस देते हैं, तुम लोग बोलो तुम लोग बोलो, हम तो पीछे से देखो ना, हमारा हाथ देखा नहीं ऐसे हमेशा, शक्ति तो हमारी चालू है, ये जो बोल रहे हैं ना है तो हमारा लिखा हुआ हमारा है, शक्ति हमारी है पीछे से, ये देखो ऊपर से दिखता नहीं, वो सामने से बोल रहा है, हम उसके पीछे खड़े ऐसे फरिश्ता स्वरूप में, छत्र छाया बैक बोन और सकाश दे रहे हैं। ऐसे उल्टा अर्थ भी नहीं लेना, कोई कहेंगे अरे वहां सेवा है वहां जाओ थोड़ा कोर्स बेस, मैंने कोर्स नहीं उसको भेजो, मैं पीछे से सकाश दूंगी उसका उल्टा नहीं ले लेना, पर दूसरे भाषण दे तुम सकाश दो, कितना अच्छा वाक्य है। या फिर कोई भी भाषण दे रहा हो और कहीं पर भी, उसमें भी शक्ति भर देना है। सभा में भी बैठे हैं और सामने कोई वक्ता है, उसको भी पावर देनी ताकि उसके वाणी से आत्माओं का कल्याण हो, यह भी काम करना है। गुजरात, उसके बाद में डबल फॉरेनर से मुलाकात। दो महत्वपूर्ण बातें, तुम्हें क्या बनना है, चलता फिरता म्यूजियम, चैतन्य म्यूजियम, अलग अलग चीजें हो उस म्यूजियम में, होठ तुम्हारे, आंख, मस्तक, उस दिन भी कहा था सब कुछ चमकता हुआ, अलग अलग साधन हो म्यूजियम में। और दूसरी बात, सूक्ष्म रियलाइजेशन करो। हाँ तुम आए हो, घर का श्रृंगार हो, तुम्हें देख के सब खुश हो जाते हैं, हाँ तो हाँ ना तो ना, सच्चे हैं, झूठ नहीं है। बाबा को ऐसे बच्चे प्रिय है जो बाबा को गोल गोल नहीं घुमाते कोई बच्चे होते ना गोल गोल पूरा पिता को पूरा घुमा देते, घर परिवार को घुमा देते, माँ को कुछ बोलते, पिता को कुछ बोलते, भाई बहनों को कुछ बोलते, कुछ ना कुछ करते रहते, उपद्रवी तो उसकी भी कला तो डबल फॉरेनर्स। उसके बाद में सत्रहवीं पॉइंट, फूल, फूल की सेवा जिनकी थी। क्या कहा, दुनिया में भी फूल बनाते हो कर्तव्य, वो भी सजाते पर कर्तव्य ड्यूटी समझ के तुम स्नेह स्वरूप करते हो, इसलिए श्रृंगार और सुगंध दोनों ही सुंदर हो जाता है। तुम्हारा किया हुआ श्रृंगार और तुम्हारी सुंदर और अधिक सुंदर हो जाती है, और बाप का स्नेह और सहयोग तुम्हें पदम गुना मिलता है इस स्नेह के लिए, यह देखकर सभी खुश हो जाते हैं। और लास्ट पॉइंट और अठारहवीं पॉइंट, बांधेलियों को बाबा याद कर रहे हैं और मुरली के विषय में कहा, दो प्रकार है, एक वो जो प्रेम करते, एक है प्रेम करना, एक है प्रेम में निभाना, दो अलग अलग चीजें। प्रेम करना तो बहुत आसान है, प्रेम फ्रेंडशिप करना जैसे बहुत आसान है, पर उसको निभाना कितना मुश्किल है। फ्रेंड तो जिसके उससे कर लेते हैं, वो फ्रेंड वो भेजते रिक्वेस्ट और ट्रैक ये बांध देते आगे, वो करने में एक्साइटमेंट है, फ्रेंडशिप करने में, प्यार करने में बहुत एक्साइटमेंट है प्यार, फिर आगे निभाना वो मुश्किल है, अब निभाना पड़ेगा, अब दुखी है, अब बंद गए और कहीं जा ही नहीं सकते, अब ये सारी चिंता होती है तो हाँ वो गुड़गांव को क्यों किया बताए, नहीं वो कॉम्बिनेशन इतना कुछ खास नहीं है, अमेरिका का और गुड़गांव का, शायद दादी गुलजार गुड़गांव की माता है अमेरिका और इंग्लैंड, इंग्लैंड बोल दिया तो कुछ और बात थी लास्ट पॉइंट मुरली एक है निभाना सुनना, एक एक है प्यार करना, एक है प्यार निभाना। तो बाबा ने मुरली मधुबन में मुरली बाजे, कहा कि हम कभी कभी सुनते हैं, तो बाबा ने कहा उस प्यार को बाप दादा प्यार नहीं करते, मुरली से प्यार अर्थात मधु मुरली धर से प्यार, मधुबन में आना जरूरी है यहाँ का वातावरण। तो 18 बातें हैं टोटल मुरली में बाप के पास। इधर और एक बात बीच में आ गई, बाबा के पास बहुत बड़ा टीवी है जिसमें सारी वर्ल्ड दिखाई देती है। पूछे गिने कितने है बाप, बाबा ने ये भी कहा फोटो भेज देना मुझे बाद में, कैसे भेज देना वो नहीं पता, मेल से भेज देना, ये भी कहा पत्र मिले मेल मिले, मतलब बाबा मेल भी चेक करता है डेली। बाबा अपना मेल देखता हूँ, आज मैंने मेल देखा नहीं, देखा नहीं कौन सा है, चलो देखता हूँ। अच्छा एक ऐसी मुरली है जो पूरी वैसे के वैसी एक बार पहले भी चली है, सुना है कोई, तो एक मुरली है जो एक हाथ दो साल पहले वैसे की वैसी बाद में चली, कितना आश्चर्य है। अगर ये भाषण जो अभी कर रहे हैं या कोई भी करता है उसको बोलो एक घंटे के बाद वही भाषण करके दिखा, वैसे के वैसे करते कर सके, नहीं कर सकता। एक पूरी मुरली है श्री बेफिक्र बादशाह की जो एक साल पहले चली थी, हम बैठे थे हमको याद है डायमंड हॉल में, एक भाई वो मुरली बुक खोल के बैठ गया, बोला क्या वो क्या कर, बोले वही सेम 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 टू सेम कर रहा है, इतना खुश हो रहा है। मैंने बोला ये कैसे आपको मिल गई, बाबा तो अभी चला रहे, वो कहते सेम टू सेम सेम टू सेम, ये देखो 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 एक एक दिखा रहा है। हम भी सोच रहे अरे बाप रे आश्चर्य। कैसे निकाला भी कैसे उसने पता नहीं, वो बुक लेके बैठ गया था, कमाल है। पहले ही बाबा ने भेज दी होगी उसको सुबह सुबह। तो 18 पॉइंट, सबसे पहली पॉइंट लव और लवली बच्चे, लव लवली और लवलीन बच्चे, दूसरे दो प्रकार के गीत, तीसरा दो प्रकार की माला है, तीसरा स्नेह का प्लेन और मन का प्लेन, अगला अव्यक्त रूप और फरिश्ता रूप, अगला स्मृति दिवस हो समर्थि दिवस। तो ये सब दो दो है यहाँ पर। उसके बाद में एक स्मृति तुमको दिलाई, मैं कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा हूँ। तो मुरलियों से ऐसा लेना है कि जैसे ये स्मृति आए, पूरी मुरली क्या है, ऑफलाइन इधर है। तो स्मृति, तो जब शरीर की स्मृति में मैं आ जाता है तो मैं भूलता नहीं है, उसी तरह मेरा बाबा, बाबा ने कहा ये गोल्डन वर्शन है, मेरा बाबा मीठा शब्द है, मेरा मीठा बाबा, ये गोल्डन वर्शन है, ये गोल्डन स्वर्णिम वाक्य है, ये शब्द भी ना भूले। उसके बाद में कहां थे, स्नेह का दिन है ये, स्नेह से मेहनत नहीं लगती है, जब स्नेह नहीं रहती है तब मेहनत लगती है, स्नेह से माया को छुट्टी दे दो, माया को छुट्टी दी, फिर उसके बाद में ये वर्षों को कैसे मनाओ, मुक्ति वर्ष मनाओ, समस्या मुक्त वर्ष, न्यारा प्यारा वर्ष। उसके बाद में फाइल को अभी बंद करो, फाइनल कर दो सारी प्रतिज्ञा है, उसके लिए कुछ भी करना है। उसके बाद में बताया एक एडिशन करनी है, मनसा वाचा कर्मणा, जो भी सेवा करे तीनों उसमें डाल देना, छोटी सी छोटी सेवा हो परंतु मन उस समय सकाश देता रहे, शक्तियां भरती रहे उस कार्य में। उसके बाद में कब तक, कब तक, तो बाबा ने कहा तुम बताओ पहले कब तक कब तक का उत्तर है कब तक, कड़वेपन की चाल, अलबेलेपन की चाल और पुरानी भाषा, टालने की भाषा भी आया एक जगह, उसको भी छोड़ो, बहानेबाजी की भाषा, ऐसा नहीं वैसे की भाषा, और यहां पर बोला बाबा के पास बहुत बड़ा टीवी है जिसमें बाबा टीवी में सारी वर्ल्ड देख लेते हैं। उसके बाद में अगला आश, बाप दादा की एक ही आश है, कारण खत्म, निवारण स्वरूप, समस्या समाप्त, समाधान स्वरूप। यहां एक संकल्प लिया जा सकता है, मेरे पास हर समस्या का समाधान है, किसी से पूछना नहीं है, कोई खत नहीं लिखना है, कोई मेल नहीं करना है, मेरे पास हर समस्या का समाधान पहले से ही है, मैं स्वयं ही समाधान हूं, मैं स्वयं समाधान स्वरूप हूं। अभी अभी मुरली चलू, ना समस्या बनेंगे, ना समस्या स्वरूप बनेंगे, ना समस्या से घबराएंगे, मैं समाधान स्वरूप हूं, मैं समाधान हूं, मेरे पास हर समस्या का समाधान है, मैं उत्तर स्वरूप हूं, मेरे पास हर प्रश्न का उत्तर है, हर कारण का निवारण मेरे अंदर समाया हुआ है। ये पूछ ही नहीं सकते, कैसे पूछेंगे, क्योंकि सबका यही तो समान है।
सबको सोचना, खाली यही नहीं बोलते।
सबको यही सोचना है, तो एक दूसरे से पूछने का सवाल ही नहीं आ गया फिर तो। अगला 14वां एडवांस पार्टी पूछ रही है, मधुबन के हेड्स, दादिया सेंटर, जोनल इंचार्ज, सबके लिए ये प्रश्न है। जो अभी अभी आया 7 दिन वाला है वो भी जिम्मेवार है, हर एक से लिए ये प्रश्न है, जिम्मेदारी का ताज पहना है। अगला 15, फिर उसके बाद में गुजरा, मनसा सेवा नंबर 1, और वो भाषण दे और तुम पीछे से सकाश शक्ति देते रहो, वो उधर से भाषण देते रहे और हम इधर से सकाश, पर उल्टा मत लेना। उसको बाद में पूछना, तुमको ऐसा लग रहा था ना भाषण देते समय कोई पावर आ रही है, बस हम ही थे वो। ऐसे तो लग रहा होगा, कोई कोई पॉइंट तुमने ऐसी बोल दी होगी जो तुमने सोची नहीं थी, वो कहेगा हाँ हाँ 2-3 पॉइंट तो बिल्कुल मैंने सोची नहीं थी, वही तो। हम ही तो थे वो। तुमको ऐसा लग रहा था कि ऊपर से कोई है ऐसी शक्ति आ रही? हाँ लग तो रहा था, क्योंकि मेरी तैयारी तो थी नहीं, हम बस हम ही तो थे वो। अगला डबल फॉरेनर्स, चलता फिरता म्यूजियम बन जाओ, चित्रशाला, चलती फिरती चित्रशाला, मोबाइल चित्रशाला, चलायमान चित्रशाला, मोबाइल म्यूजियम, लिविंग म्यूजियम और सूक्ष्म रियलाइजेशन, सटल रियलाइजेशन, बहुत सूक्ष्म, जितना रियलाइजेशन सूक्ष्म होगा उतना परिवर्तन अंदर से होगा और सूक्ष्म होगा, गहरा होगा, स्थायी होगा, जितना रियलाइजेशन सतही होगा, उथल होगा, उतना परिवर्तन कमजोर, अस्थायी, अल्पकालीन होगा, गहरा रियलाइजेशन चाहिए। उसके बाद में फूल वाले, बाबा ने क्या कहा कि स्नेह स्वरूप से जो भी करोगे उसमें और सुंदर हो जाएगा, और बाबा थोड़ा सा जो भी तुमने किया उसका पदम गुना स्नेह में रिटर्न दे रहे इस सेवा का। और लास्ट पॉइंट, बांधे लिया जो यहां है ही नहीं उसको याद कर रहे, और उनका स्नेह बाप तक पहुंच रहा है, स्नेह की लहरें पहुंच रही है। और मुरली, प्रेम करना, प्रेम निभाना, तो प्रेम करने वालों की लिस्ट में नहीं, खाली प्रेम निभाने वालों की लिस्ट में, इसलिए मुरली से प्यार, मुरलीधर से प्यार, मधुबन में मुरली बाजे। तो इतनी बड़ी मुरली, बहुत सारा काट छाट इसमें, बहुत सारी बातें इसमें नहीं ली गई, ओरिजिनल मुरली जिनको चाहे वो पढ़ सकते हैं। तो सार कि वो जिंदगी में ऐसा आया है, तुम ही कहो जो ऐसे दिल क्यों ना गाए, मेरे जिंदगी में आए हो और ऐसे आए हो तुम, तुमको पाके हंस के गा के निखरी है सवरी है जिंदगी, उजली सुबह रंगी शामें आ गई एक नई दिलकशी, ओमान भी लो रात जो कहती है फिजा जो समझाए, मेरे जिंदगी में आए हो और ऐसे आए हो तुम, तुमसे पहले देखे कब थे मैंने ये ख्वाबों के कारवा, तुम जो आए तुम हो लाए अनकही अनसुनी दास्ता, ओ सुनो जरा मेरे दिल भी हाय वो कहानी दोहराए, मेरे जिंदगी में आए हो और ऐसे आए हो तुम।
मेरी जिंदगी में आए हो और ऐसे आए हो तुम, जो खुल गया है सांसों में वो गीत लाए हो तुम। मैंने ये ख्वाबों के कारवां, तुम जो आए तुम हो ना आए, अनकही अनसुनी दास्तां। ओ सुनो जरा सुनो जरा, मेरा दिल भी हाय वो कहानी दोहराए। मेरी जिंदगी में आए हो और ऐसे आए हो तुम,